Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Acharya Swami Sri Bhagavatanandaji Saraswati Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Param Premaspad Paramatma Srub Srutaru. So, कल पढ़ा था, उस श्लोक को दोहराने की जरूरत नहीं है। कल पढ़ा ही था, तिलेशु तैलम और दधनी घी घृतम सर्पी घृतम विवर्पितम। तो ये बताया इन्होंने कि तिल में तेल होता है लेकिन पेरा जाता है, ये ध्यान है, कोलू में चला के पेरा जाता है। इसी प्रकार से नाम रूपात्मक जगत में सब जगह भरा है परमात्मा ठसा ठस, लेकिन मेहनत करनी चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। देखो धान कूटा जाता है कैसे सफेद निकलता है, सफेद चावल निकल आता है, वो सात्विक है। और कूटा जाता है पीटा जाता है, चमड़ी निकाल दी जाती है, चमड़ी निकाल दी जाती है तब वो निकलता है सात्विक चावल। फिर चावल कितना ही दाल को धो, कितना ही धो, जब निकलेगा तो उसमें से पानी निकल आएगा, वो गंदा गंदा पानी निकलता है। कितना ही धो, हमने एक दिन दाल को बहुत धोया, देखे कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी जब पहला उफान आया तो गंदा ही निकली। इसका मतलब है कि वासना बहुत गहरी है, सुविरूढ़ मूलानी गीता में तो लिखा, तो बहुत गहरी हैं वासनाएं। ये वासनाएं हमको कहां ले जाएंगी ये कुछ पता नहीं चलता। वासना इसलिए उपासना को बहुत मजबूत रखना चाहिए, तब वासना दूर होगी। ये योग वाशिष्ठ में बहुत ढंग से दिया गया, बड़ी विस्तार में, कि उपासना करते करते, उपासना उधार नहीं है चूंकि उधार है, इसलिए जितनी हो सके उतनी इस जन्म में, फिर अगले जन्म में काम आ जाएगी, वहीं से आगे चल जाएगा मामला। जितनी उपासना हुई है उतनी तो हाई है और अगले जन्म में उससे आगे चल जाएगी, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे भरत जी के पूर्व जन्म में बहुत कुछ ज्ञान किया था और फिर हिरण हो गए, शरीर चूंकि हिरण के चिंतन में गया तो हिरण होना पड़ा, लेकिन उन्हें याद रही। उपासना और ज्ञान में ये अंतर होता है, उपासना और जितना ज्ञान हो जाता उतना ज्ञान रहा। रहुगण को उपदेश दिया था तो उनको एक ज्ञान रहा कि मैंने उपासना की है, ये उन्हें खुद याद जन रहा है, लेकिन व्यवस्थापक को तो करना पड़ता है ना, इसलिए उन्होंने हरे नमः जपना शुरू कर दिया। और हरे नमः जप करके अंत में देखो कितने बढ़िया निकल गए, कितना उपदेश दिया है। तो इसी प्रकार से पहले परिश्रम करना चाहिए, तब इसने माने तेल भी होता है, इसने माने प्रेम भी होता है। इसने का दीपक जलेगा कब, जब परिश्रम करोगे, पुरुषार्थ करोगे। आज हमारे स्वामी जी ने गणतंत्र दिवस पर बताया, बड़ा बढ़िया, ये भी एक परिश्रम की बात है, ये भी स्वार्थ की बात है। असल में जो संत महात्मा महापुरुष हैं वो बुद्धि देते हैं कि जाओ लड़ो जाए, लड़ते नहीं खुद है। जैसे श्री कृष्ण भगवान बुद्धि देते थे अर्जुन को, स्वयं कहां लड़े, स्वयं तो उन्होंने अस्त्र ही नहीं उठाया, निशस्त्र रहे। बर्यामास केशवम केशों को बड़ा क्या किया, निशस्त्र निशस्त्र लड़ेंगे हम, तो चाहे लकड़ी में आग निकालना हो, चाहे दूध में घी निकालना हो, और चाहे तिल में तेल निकालना हो, परिश्रम सब में करना पड़ेगा। नाम आत्मा बलिहीन लभ्या, ये आत्मा बलिहीन के लिए नहीं है, ये परिश्रम के लिए है। और परिश्रम भी उचित हो, ये नहीं कि परिश्रम ही कर रहे हैं परिश्रम का कोई फल नहीं, परिश्रम उचित होना चाहिए। जैसे कोलू में पेरा जाता है और मथानी चलाई जाती है घी के लिए, और लकड़ी के लिए लकड़ी लकड़ी घिसी जाती है, तो उसमें परिश्रम पड़ता है। लोग है ये कहते हैं आसान जौन हो, सरल तरीका हो तो हम बता दो। हम कहते हैं सरल तरीका धन कमाने में, झूठ बोलने में, जुआ खेलने में, इनमें तो सरल होना चाहिए, इसमें तो कठिन से कठिन बताओ। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कठिन से कठिन परिश्रम हो हम चढ़ जाएंगे। चाहे जितने पर्वतारोही चढ़ते हैं देखो पर्वत पर, और कठिन परिश्रम भी पड़ता है भाई, परिश्रम क्यों नहीं पड़ेगा, परिश्रम तो पड़ता ही है। तो इसीलिए ये जानबूझ के कहा गया परिश्रम पहले होना चाहिए। पुरुषार्थ हो नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगा, सिंह के मुंह में अपने आप थोड़ी मृग चला जाएगा, कुछ तो उसको हाथ पैर पटकने पड़ेंगे। और आज करके डकैत क्या कहते हैं, कहते हैं भाई पाप पड़ेगा, हम बिना मेहनत के नहीं लेंगे, मेहनत थोड़ी बहुत कूट पीट देंगे, रोआ रट हो जाएगा तो हमें पाप नहीं पड़ेगा। ले वो कहते हैं थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे तब लेंगे तो हमें पाप नहीं पड़ेगा। परिश्रम तो किया है भाई, बिना परिश्रम थोड़ी ले रहे हैं ये तो। खैर वो तो बात जाने दो, लेकिन ये बात जरूर है, स्नेह दीपक जब जलता है जब वो पेरा जाता है, ऐसे ही नाम रूप प्रपंच में परमात्मा है जैसे तिल में तेल है, लेकिन ऐसे ही परमात्मा भी शरीर में है, लेकिन वो ध्यान निर्मथनाभ्यासात, ध्यान से निर्मथन से और अभ्यास से, इन तीनों चीजें अलग अलग हैं। इनके द्वारा भगवान जब मंथन करते हैं, गर्मी बढ़ती है थोड़ी, तब काम बनता है, तब परमात्मा वहीं मिल जाता है, शरीर में ही बैठा है। तद आत्मना गृहते असौ, असौ माने ये अयम, ये जानबूझ के दे दिया, ये आत्मा वहीं मिलता है। मिलता है क्या, कहीं खो गया है क्या, वो असल में अपने को अभ्यास हो गया है ऐसा कि अध्यास में रहने का, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान में कुछ होती नहीं है। ये संसार जो बना है पंच महाभूत का, पंच महाभूत खुद ही कार्य हैं, वो बेचारे क्या करेंगे, पंच महाभूत खुद कार्य हैं। पंचीकरण याद करो, पंचीकरण, तो फिर समझ में आ जाएगा कार्य कैसे है। तो ये पंच महाभूत के बने हुए शरीर ये बेकार हैं, मिट्टी मिट्टी पृथ्वी हड्डी मांस है शरीर में, और जल तत्व तो रक्त है, रस है, जल है, तेज अग्नि है ही है जो पचाती है अन्न को, पांच प्रकार की अग्नियां होती हैं, और वायु है ही है जो नाक से द्वारा जाती है, और आकाश है बोल जगह जगह खाली जगह, जैसे मुंह है, पेट है, और नासिका है, इनमें जहां जहां खाली जगह है वहां आकाश है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो आकाश पंच महाभूत से शरीर बना है। अब ये बेचारा शरीर इतना असमर्थ है, इंद्रियां इतनी असमर्थ हैं कि एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती, और एक आदत इनमें खराब है, वो आदत ये है कि परांची खानी वितरण स्वयंभू, वो इंद्रियां बाहर को देखती हैं, और भीतर अपना प्रियतम बैठा है। भीतर प्रियतम बैठे होने पर भी बाहर को देखती रहती हैं। बाहर को क्यों देखती हैं भाई? एक नई बहू आई रही तो वो खिड़की होके झांकती थी बाहर। सास ने कहा कि भाई बेटा बैठा भीतर, उसको देखो, तुम बाहर क्यों झांकती हो? लेकिन उसकी आदत थी, एक दो बार कहा लेकिन नहीं मानी, तो उन्होंने कहा कि चलो इसकी आदत ही ऐसी होगी। तो ये इंद्रियां बाहर की ओर झांकती रहती हैं, बाहर के विषयों को लेती हैं, अपने अंदर आत्मा को, आत्मा में आश्रय में बैठे तो फिर परम सुख मिल जाए। जो सबको सुख चाहिए वो सुख मिल जाए। ऑफिस क्यों जा रहे हो? भरे आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। अच्छा घर क्यों जा रहे हो? भाई दिन भर के थके हुए घर जाएंगे, सुंदरी आएगी मुस्कुराती हुई, बच्चे आएंगे मुस्कुराते हुए, तो जरा तसल्ली होगी, दिन में राहत मिलेगी, थोड़े थके हैं तो राहत मिल जाएगी, इसलिए जा रहे हैं सुख, सुख ढूंढने। मजे की बात यह है, सुख चाहिए और वो सदा चाहिए, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में सबसे सुख चाहिए, सबसे सुख चाहिए माने हर देश में, हर जगह, हर काल में। ये नहीं कि सुबह शाम मिल जाए बस काम चल जाए, हर मिनट में मिलना चाहिए, हर पल सुख मिलना चाहिए। तो ये तो बात सही है, सुख और परम सुख, सुख जो होते हैं वो प्रायः ऐसे होते हैं कि जो अभी हैं और थोड़ी देर में नहीं रहेंगे, लेकिन ये सुख ऐसा मिलना चाहिए जो सदा रहे, सत के साथ सुख जुड़ा हुए। अच्छा, और हमें मालूम भी पड़ना चाहिए, ये नियम है कि जिसमें आत्मा का भेद होता है तभी सूचना मिलती है। जैसे जैसे कोई समाचार मिला 4 लाख की लॉटरी खुल गई, तो आपको अभी मालूम नहीं है, आप में अब अभिन्नता नहीं आई है, अब अभेद है, भेद है, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, तो आपको सूचना नहीं मिलेगी, सूचना नहीं मिलेगी तो आनंद भी नहीं आएगा, क्या पता हमें जाने क्या क्या। और जहां सूचना मिली तहां बस फिर क्या कहना, खुशी की दौड़ जाएगी। तो ये 4 लाख की लॉटरी खुली है, ये मालूम होए तब प्रसन्नता होगी, और नहीं मालूम होगी तो 4 लाख होए बेकार है। तो हमसे आत्मा से अभिन्न होना चाहिए, ये बात है। जैसे वहां सर्वव्यापिनम आत्मानम आया, सर्वव्यापी आत्मा, सर्वव्यापिनम शब्द है, तत्पद है वो, और आत्मा त्वमपद है, वो महावाक्य है। तो सर्वव्यापी परमात्मा और आत्मा एक ही है, ये तो बात गीता में संकेत किया है कई बार भगवान ने, जन्म कर्म चिमे दिव्यम यो जानाती। देखो जन्म कर्म दिव्यता को जो जानता है, पुनर्जन्म न लभ्यते, पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, तो जाने हमारे जन्म कर्म का और उसका क्यों नहीं पुनर्जन्म होगा, इसका मतलब एक है वो, आत्मा परमात्मा एक है, ये प्रमाण मिला। ऐसे गीता में कई जगह हैं, आप देख लेना, विचार कर लेना। तो व्यापी कैसा है? जैसे आग के गोले में, लोहे के गोले में आग हो जाती है ऐसे? कहा कि लोहे के गोले में आग तो लोहा अलग है, गोला अलग है, फिर स्वर्ण सोने में, सोना आग में जलता नहीं है, देखो इसका मतलब तेज का रूप है, और दूध जल जाता है, दूध तो जरा देर तक रखा रहा है तो जल जाएगा। मतलब दूध पानी का रूप है, दूध घी पानी का रूप है, और घी और स्वर्ण ये आग से और तपता है, ये जलता नहीं है और तप जाता है, तो और तप जाता है, इसका मतलब है कि स्वर्ण पानी का नहीं है, स्वर्ण तेज का है, वो आग से और तपता है, बढ़िया निकल आता है। और ये सर्पी, इसीलिए इन्होंने पंचमहाभूत को उदाहरण दिए, सर्पी का घी बताया, लकड़ी में बताया, पार्थों में, जल में, तेज में, सब में परमात्मा है। बाद में कहा कि एवमेव आत्मनि गृहीते असौ, असौ माने वो आत्मा, ग्रहण कैसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है जैसे तिल में तेल और लकड़ी में घी, लकड़ी में आग और सर्पी में दूध में घी, ऐसे जैसे इसको परिश्रम से किया जाता है, ऐसे परिश्रम करोगे तब मिलेगा। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, ये बलहीन लोगों के, कमजोर लोगों की जरूरत नहीं है, ये तो सजोर चाहिए, ये कह रहे हैं। ये पंचमहाभूत इसलिए लिए कि लकड़ी ली पार्थो, और जल लिया दूध घी, दही कुछ समझो, और तेज लिया स्वर्ण, नहीं तो मिट्टी से ही काम चल जाता, मिट्टी का घट उदाहरण देते, घट ही थोड़ी मिट्टी, मिट्टी ही घट है, मिट्टी घट है, और घट ही मिट्टी कहां है, तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई बताएगा भाई? मिट्टी ही घट है, ये तो बात सही, मिट्टी बदल गई घर में, आरंभवाद है, और घट ही मिट्टी कहां है, तो हाँ सुराही भी तो है, शाबाश, सुराही भी है, सखोरा भी है, और भी बर्तन तो बन सकते हैं, घट ही मिट्टी क्यों कह दिया? उस मिट्टी का ये मतलब उपादान लक्षण है, ये जितने किलो में मिट्टी में घड़ा बनेगा उतने ही किलो माना जाएगा, माने जितने में घड़ा बनेगा वही मिट्टी केवल उपादान कारण है, और सब नहीं है, ताल में तो तालाब में बहुत है मिट्टी, लेकिन जितने में घड़ा बना है उतने में बनाया जाएगा उपादान लक्षण। घड़े का उदाहरण इसलिए देते हैं कि ये शरीर घड़ा ही है, बिल्कुल बिल्कुल मुंह की तरह, मुंह वैसा है और पेट भी वैसा है घड़े जैसा, और अगर घड़े और प्रणव दो चीजें हैं बिल शरीर में, प्रणव भी ओंकार अगर देखो तो ये ऊपर का अलग एक, और बीच का अलग, और मूलाधार से लेकर के पैर दोनों अलग, तीन प्रणव बन जाते हैं शरीर में, इसी शरीर में तीन तीन प्रणव बन जाते हैं। अच्छा, तो अब ये अविद्या मूल और रह गया, अविद्या मूल, अविद्या का मतलब है कि अविद्या ये कैसे निवृत्त होती है, अज्ञान निवृत्त कैसे होता है, ये बात बताई गई। तो अविद्या मूल में ब्रह्म विद्या है, अविद्या माने ब्रह्म विद्या। तो अविद्या कैसे दूर हो, अज्ञान कैसे हमारा दूर हो, जिसके कारण हम दुखी हैं, जिसके कारण हम दीनहीन हो गए, अपूर्ण हो गए, ये बात समझने की है कि हम बहुत दिनों से देह में लगे हुए हैं और देह विनाशी है, और इंद्रियों में लगे हुए हैं, इंद्रियां भी विनाशी हैं, और जैसे देह परतंत्र है तैसे इंद्रियां भी परतंत्र हैं। हमारा मन परतंत्र है, मन स्वतंत्र नहीं है, हालांकि मन सात्विक होने पर भी, और इंद्रियां मनुष्यास्मी अपने भगवान स्वयं कहते हैं, इंद्रियों में मन मैं हूं, लेकिन फिर भी मन लगता नहीं है, ये सब शिकायत करते हैं। अब चाहे बहाना करते हो अर्जुन की तरह, चाहे वैसे अर्जुन ने भी कहा था चंचलम विमाना कृष्ण, तो भगवान हंसने लगे, कहा कि अच्छा तुम कह रहे हो चंचलम विमाना कृष्ण, क्यों जो जो प्रणय करने योग आई थी उर्वशी अप्सरा, वो कितनी सुंदरी है, और उसको माता बना लिया, पुत्रो हम रक्षो हम सुपुत्रवत, रक्षणी हम अपने पुत्र की तरह हैं, अपने पुत्र को समझो, अरे विवाह होगा फिर हमें जैसा बेटा हो, फिर ज्ञानी बने, फिर विज्ञानी बने, फिर धनुष में इतना है, इतना लंबा मार्ग क्यों, हम स्वीट और स्वेट शॉर्ट बता दें, स्वीट भी हो शॉर्ट भी हो, हम ही आज से तुम्हें रक्षो हम सुपुत्र वत, हमें ही रक्षा करो अपने पुत्र की तरह, जिम बाल कहीं राख मातारी। तो परमात्मा कहीं दूर थोड़ी है, दूर नहीं है, देर नहीं, द्वितीय नहीं है, लेकिन होना चाहिए परिश्रम, ब्रह्म विद्या होए तो अज्ञान निवृत्त होए, अज्ञान को अविद्या को दूर करने के लिए केवल ब्रह्म विद्या ही आत्मविद्या ही समर्थ है, और नित्य नित्य करके जो आप ये नहीं ये नहीं, ये देह नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, इससे अज्ञान निवृत्त नहीं हो सकता, ज्ञान तो हो जाएगा, आत्मा का ज्ञान हो सकता है नित्य नित्य, नित्य नित्य जी वाक्य ने श्रेष्ठम यत परम पदम निराकर्तम शक्यता तदस्मी सुखी भाव, नित्य नित्य करते करते ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अज्ञान निवृत्त नहीं उससे होगा, अज्ञान निवृत्त तभी होगा जब वृत्ति तत्त्वमस्यादि वाक्य ही वृत्ति बनेगी, माने महावाक्य वो होते हैं जो दोनों पदों को जोड़ाते हैं, तुमको भी तत् को भी जो जोड़ते हैं वो वाक्य होते हैं, तुम और तत्, और तुम एक हो और तत् एक हो तो फिर अवांतर वाक्य है, वो अवांतर वाक्य कहलाता है, वो अवांतर वाक्य एक वाक्य है, चाहे तुम का चाहे तत् का, और महावाक्य वो होता है जो तुम और तत् दोनों को जोड़ता है, तो वृत्ति चाहिए, इसीलिए तो समाधि के लिए कहते हैं समाधि वृत्ति निरोध हो जाता है, उसमें समाधि में तो वृत्ति निरोध होता है, और यहां वृत्ति चाहिए, ब्रह्माकार वृत्ति बने तब अज्ञान निवृत्त हो, अविद्या निवृत्त हो। सियावर रामचंद्र की जय।